मेरी जूत में उसके लैंड का पानी टपका तो मैं झट से उठकर बाथरूम से जूत की सफाई कर ली। उसके बाद मैंने अपने पर्स से आईपिल खा ली भाई, ताकि कोई लफड़ा ना हो जाए। फिर उससे पूछा, तेरा हो गया, चल निकल यहाँ से। बिना कुछ बोले मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके जाने के बाद रूम सर्विस वाली आई और बोली, मैडम ये 10,000 मिले हैं, आप रखो, जो बख्शीश देना चाहो दे दो। मैंने कहा, अभी 7 दिन और हैं, इन्हें भी तुम रखो, कल से जो मिलेगा वो मैं लूँगी। वो मेरा मुँह देखते हुए बोली, मैडम सच में ये सारा मेरा? मैंने कहा हाँ। अगले दिन वो मुझसे मिली, मैडम यहाँ तो आपको कोई भी पहचान सकता है, अगर बोलो तो किसी गेस्ट हाउस में फिक्स करूँ, वहाँ पर 2-3 लौंडे एक साथ आते हैं, मगर एक रात का 50,000 मिलेगा। मैंने कहा नहीं, वहाँ पर ब्लू फिल्म बना ली जाती है, मैं नहीं वहाँ जाऊँगी, जिसको आना यहीं आएगा। वो बोली ठीक है मैडम। आधी रात को फिर फ़ोन बजा और उसने कहा, मैडम एक लड़का आया है, सिर्फ 1 घंटे रहेगा, मैं उसे उस घंटे में जो भी करना होगा करेगा, बोलिए फिक्स करूँ, 10,000 देगा। ठीक है भेजो। जब वो आया तो मुझे लगा इसको मैंने कहीं देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि छोड़ो अपने को क्या, उसकी उम्र 20-22 साल की होगी और वो और लड़न भी कोई खास लंबा मोटा नहीं था। वो आया, मेरे कपड़े उतार कर मेरे मम्मो को दबाने लगा, काटने लगा। मैंने उससे कहा, ओए भोसड़े वाले, ये काटने के लिए नहीं चूसने वाले आम हैं, मजे से चूस और इसका रस पी, अगर दिल ना भरे तो नीचे भी रस का तालाब है, उसे भी चूस ले। उसने जीभ भर के मेरे मम्मो को चूसा और चूत को भी चूसा। इन सबको करने में ही 1 घंटा हो गया। मैंने कहा तेरा टाइम खल्लास हो गया, अब क्या करेगा? बोला बाकी का काम कल करूँगा, चल तुझको आधा घंटा और दिया, तो बाकी का काम भी अभी पूरा कर। उसने बहुत कोशिश की मगर उसका तो लड़न खड़ा ही नहीं हुआ। बोला मैडम किसी से कहना मत, मैं कुछ नहीं कर पाया, आपकी फ़ीस कल भी देता हूँ। मैंने कहा चल निकल, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली, अगर कल आया और ना हुआ तो ज़रूर सबको कह दूँगी। वो जल्दी से बिना चुदाई किए बाहर चला गया। रूम सर्विस वाली को एक लिफाफा देकर बाहर भाग गया। उस भाई ने उसी समय वो लिफाफा मुझे दिया। मैंने गिने, पूरे 20,000 थे। उसमें एक चिट भी थी जिस पर लिखा था, प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। उसके नेक्स्ट डे रूम सर्विस वाली आई और मेरी तरफ एक लिफाफा देते हुए बोली, कल वाला लड़का फिर से आया है और एडवांस दिया है। मैंने लिफाफा रख कर कहा, उसे भेज दो, वो अंदर आया तो मैंने कहा दरवाज़ा लॉक करो। उसके बाद वो मेरे पास आया और बोला, मैडम मेरा लंड पूरी तरह से खड़ा होता है, मगर आपके सामने पता नहीं इसे क्या हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बाथरूम में जाकर लंड को पूरी तरह से साफ करके मेरे पास आओ। कोई 5 मिनट बाद वो अपने लटकते लंड के साथ बाहर आ गया। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका लंड मुंह में लेकर चूसना शुरू किया और लंड की चमड़ी को पीछे तक ले गई। इसका असर हुआ कि उसका लंड पूरा अकड़ गया। आप ये कहानी antarvasna.com पर सुन रहे हैं। मैंने चूत को फैलाकर कहा, अब डाल इसमें और जितने ज़ोर से झटके मार सकता है मार। उसकी एक बार की झिझक निकल गई और लंड पूरे शबाब पर था। कहाँ उसका लंड खड़ा नहीं होता था और अब कहाँ उसका वीर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी चुदाई करके उसने अपना पानी चूत में छोड़ा और खुश होकर वापस निकल गया। मैंने पूछा, बोल खुश है ना? तो बोला, जी आपने इसे पता नहीं क्या खिला दिया। मैंने कहा, अभी तेरा टाइम बाकी है, बोल फिर से करेगा? फिर से मगर ये तैयार नहीं होगा, मैं जानता हूँ इसको। मैंने कहा, वो सब मुझ पर छोड़, वो खुश हो गया। मैं उसके लंड के सुपारी का मांस खींचकर जितना बाहर ला सकती थी ले आई। मुझे ऐसे लगा कि लंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बस एक मांस का छिलका ही है। मैंने झट से उसे नीचे करके सुपारी को मुँह में रखा और ज़ोरदार झटका मारा। उसके लंड में कुछ हलचल होने लगी। 2-3 बार इस तरह से किया और लंड पूरे शबाब पर आ गया। मैंने उसे नीचे लेकर अपनी चूत में घुसाया और ऊपर से ज़ोरदार झटके मारे। अब लंड का पानी एक बार तो निकल चुका था, तो वो जल्दी से चूत को छोड़ने वाला नहीं था। कोई आधा घंटा चुदाई करने के बाद उसने पानी छोड़ा। जब लंड बाहर निकला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मुझे एक और लिफाफा देकर चला गया। कुछ देर बाद मैंने दोनों लिफाफे खोले तो देखा रूम सर्विस वाले ने जो दिया था उसमें 10,000 थे और जो वो देकर गया उसमें 50,000 थे। मैंने रूम सर्विस वाली को बुलाया तो बड़ी अदब से बोली, जी मैम साहब। मैंने उसे कहा, ये तुम्हारी बख्शीश। उसको मुझ पर एतबार ही नहीं हो रहा था। उसने मेरे सामने गिने, बोले ये तो पूरे ही आपने मुझे दे दिए। मैंने कहा, जाओ जाओ मेरी चूत का जश्न मनाओ। बिना कुछ बोले पैसे लेकर चली गई। उसके अगले दिन मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं वापस दिल्ली आई, जहाँ पर अशोक और रोहन के लंड मेरे चूत का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मैंने अशोक से कहा, तुम शादी के बारे में कितने सीरियस हो, मैं बिना शादी के चुदवा चुदवा कर रंडी बनती जा रही हूँ। उसने कहा, मैं अपने पेरेंट्स से आज ही बात करता हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को मनाओ। अशोक के पेरेंट्स और नानू कुर के बाद आखिरकार मान गए, मगर मेरे पेरेंट्स तो सुनने ही नहीं चाहते थे। उनको लगा कि अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से जा रही है। बोले हम बिरादरी में शादी करेंगे। मैंने कहा बिरादरी में ऐसा किसी को देखा है जो मेरे लायक हो? तो पापा बोले तुम कुछ ज़्यादा ही ज़ुबान लड़ा रही हो, अब तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो समझ लेना हमारे लिए मर चुकी। मैंने कहा ठीक है, देखो मैं आपको बताना चाहती थी, शादी के बाद भी मैं हर महीने आपको इतने पैसे दूंगी, आपको अपने गुजारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पापा बोले अपने पास रख अपने पैसे, हमें ना दिखा इसकी धौंस। अब जब कुछ कहने सुनने को रहा ही नहीं तो मैंने कोर्ट मैरिज की एप्लीकेशन दे दी और एक महीने बाद मैं मिसेज रूपा अशोक हो गई। भाई देखो जुदकर तो मैं थी ही, शादी के बाद अशोक ने मेरी जूत खूब अच्छे से बजाई और हर बार मेरी जूत में मिलन का रस भरता था। अब उसका नतीजा ये हुआ कि 9 महीने बाद ही आ गया और मेरी जूत ने इस जगत को एक नया लैंड दे दिया। उसका नाम अशोक और उनके पेरेंट्स ने लवली रखा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं कि शादी के बाद तू जिंदा है या नहीं, इसलिए मेरा दिल उनकी तरफ से पूरी तरह टूट चुका था। मैंने लड़का होने की खबर भी अपने माँ बाप को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि मेरा बाप बीमार है और दवाई भी नहीं ले पा रहा। माँ का भी बुरा हाल था, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। मैंने एक दिन रोहन से कहा वो मुझसे ऑफिस में मिले। उससे मिलकर मुझे घर का पता लगा, मेरे माँ बाप कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं। मैंने उससे कहा कल मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, तुम वो उन तक पहुंचा देना और साथ में कहना तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझा था तो मैं मिल नहीं सकती, मगर मेरे लिए तुम अभी जिंदा और मैं पूरी देखभाल करूंगी। अगले दिन मैंने उसे 70,000 रुपये जो मुंबई में चूत चुदाई के मिले थे रोहन को दे दिए। शाम को जब मैं घर पहुंची तो रोहन का फ़ोन आया कि मेरा बाप जो हॉस्पिटल में था मुझसे मिलना चाहता है। मैं उसी वक्त अशोक को लेकर वहाँ पहुंची तो देखा कि एक भिखारी की तरह हॉस्पिटल में तड़फ रहा था। मैंने डॉक्टर से मिलकर पापा को एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उधर उनका सही से इलाज हुआ। एक हफ्ते के बाद घर वापस आए। मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, बिटिया तू क्या कई घर की सारी खुशियाँ चली गई, हमें माफ़ कर दे, तेरे दिए हुए 70,000 से कर्जा उतरा, अब जाकर कुछ राशन पानी मिला। मैंने कहा माँ खुशियाँ ऐसे नहीं लौटी, अब तो एक लड़की की नानी भी बन गई। माँ मुझे और अशोक को देखकर बोली अगर सही में तुम लोगों ने हमें माफ़ कर दिया तो अपना लड़का मेरी गोद में डाल दो, मैं पालूंगी, उसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी, वो उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ तुम उसको भेजोगे। मैंने कहा माँ मुझे अशोक के माँ बाप से भी तो पूछना पड़ेगा। तो बोली तुम लोग मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनके पैर पड़कर मना लूँगी। मैंने कहा ठीक है माँ, अभी तो लवली मेरा दूध पीता है, उसके बारे में कुछ दिन बाद सोचेंगे। मेरे घर आने पर अशोक ने कहा सुनो एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है, लवली जैसे ही कुछ बड़ा होगा वो नेट पर कुछ ना कुछ देखेगा, कुछ उसके दोस्त उसके लंडा चूत के बारे में समझाएंगे, नतीजा होगा कि वो अपने मम्मी पापा की चुदाई देखने की कोशिश करेगा, हम लाख चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। फिर तुम जानते हो आजकल के लड़कों की लुल्ली को लंड में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए उसे अपने पास रखना सही नहीं, उसे हॉस्टल भेज देते हैं, वो मेरी माँ के पास रहेगा। मैंने कहा हाँ बोल दो तुम सही रहे हो, मगर अभी तो बहुत छोटा है यार, कुछ बड़ा होने पर सोचेंगे। मैंने कहा ठीक है। कुछ महीने बाद हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने अपने बच्चे को अपनी माँ के पास भेज दिया। अब मेरे दिमाग में रोहन भी घूम रहा था, जब अशोक नहीं होता तो वो ही मेरी जूत का सैया बना होता, लोगों की नज़रों में भैया, रात को मेरा सैया, अगर लवली हमारे पास रहेगा तो मेरी जूत तो भूखी रह जाएगी। आप इस कहानी को antarvasna.com पर सुन रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि रोहन की कंपनी ने उसे इंडिया से बाहर भेज दिया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे वहाँ का हेड बनाकर भेजा जा रहा था, इस तरह मेरा एक जोदू भी हाथ से निकल रहा था। मैं अभी यही सोच में डूबी हुई थी और अनमने मन से ऑफिस पहुंची। वहां पर सभी एक वेट कर रहे थे कि नया बॉस आ जाने वाला है, सुनने बहुत खड़ूस है। मैंने सोचा कि लगता है अब ना घर में चैन मिलेगा ना ऑफिस में मिलेगा, लेकिन जब बॉस ने ऑफिस ज्वाइन किया तो मुझे कुछ पुरानी यादें आ गईं। मुझे लगा इसे तो मैंने कहीं देखा है। कुछ देर बाद बॉस ने मुझे बुलवाया और जैसे कमरे में पहुंची तो उठकर मेरे पास आकर बोला रूपा पहचाना नहीं? एकदम से मुझे याद आया ये तो मेरे कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि मेरी जूत की सेवाएं भी कर चुका है। मैं झट से उसके गले लगकर बोली भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मनोज, मुझे लड़की से औरत तुम्हें तो बनाया था। बस फिर कुछ देर तक एक दूसरे से चुमा चाटी करते रहे। फिर मैंने कहा छोड़ यार ऑफिस है कोई आ ना जाए, तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने पूछा और बताओ घर में सब ठीक है? तो बोला क्या बताऊँ रूपा, मेरी वाइफ अभी कुछ दिन पहले ही संसार छोड़कर चली गई। मैंने कहा ओह ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ। और बच्चे? बोला कोई नहीं, क्योंकि अभी हम लोग मौज मस्ती में लगे हुए थे। खैर तुम बताओ? मैंने कहा मेरा एक बेटा है बहुत छोटा है, मेरी माँ के पास रहता है, पति अपना बिजनेस करता है। वैसे ये बताओ तुम अभी कहाँ रह रहे हो? तो उसने बताया मैं तो होटल में रहता हूँ, कोई अच्छी जगह किराए पर देख कर वहाँ जाऊँगा। मैंने उसे शाम को अपने घर आने खाने पर इन्वाइट किया और अपने पति को फ़ोन पर बताया कि शाम को 3 के लिए पैक डिनर ऑर्डर करें, क्योंकि आज मैंने बॉस को डिनर पे इनवाइट किया। शाम को मनोज मेरे घर आए और मेरे पति से मुलाकात हुई। उधर मेरी जूत में आग लगी हुई थी, अभी कैसे बुझी ये मैं आपको नेक्स्ट कहानी में बताऊँ।